अध्याय 15 गीति काव्य उदय और विकास। गीति काव्य कविता का सर्वाधिक लोकप्रिय और परंपरा प्रशंसित प्रकार है। मानव मन के अत्यंत निकट और उसी से निष्पन्न होने के कारण इस काव्य विधा ने हजारों वर्षों से निरंतर समस्त चित्त को प्रभावित किया है। मनुष्य के सुख दुख और उसके वैयक्तिक भावों, संवेगों और इच्छा व्यापारों को जो स्वीकृति और सम्मान मिला है, यह अद्वितीय है। कविता के विषय में सामान्यतः और गीति काव्य के विषय में विशेषतः आज ये शंकाएँ सुनाई पड़ती हैं कि वर्तमान बौद्धिक युग अपनी विकल्पनात्मक प्रक्रिया के कारण इन भावनामूलक काव्य प्रकारों के लिए उतना उपयुक्त नहीं रहा। कविता ने इसलिए अपने को युगानुकूल बनाने के लिए न केवल अपने कलेवर में परिवर्तन किया, बल्कि विषय वस्तु में भी वस्तुगत तथा वैचारिक अभिव्यक्ति को प्रधानता दी। वर्तमान कविता के बुद्धिवादी होने की बात उसी कथन की पुष्टि करती है। गीति काव्य चूंकि केवल भावनामूलक और वैयक्तिक अनुभूतियों को वस्तु के रूप में स्वीकार करता है, इसलिए उसके लिए तो वर्तमान बौद्धिक युग और भी अधिक अनुपयुक्त ठहरता है। किंतु इस स्तर की अतिवादी परिणति तो तब होती है जबकि नई कविता के प्रायोगिक रूपों के हिमायती गीति काव्य के कवि को दकियानुस प्रतिगामी या युग सत्य के प्रतिदर्शी की उपाधि दे डालते हैं। यह सत्य है कि कोई कोई युग विशेष गीति काव्य के लिए उतना उपयोगी अथवा उत्साहवर्धक नहीं होता, किंतु बौद्धिक होने के कारण ही वर्तमान युग गीति काव्य के लिए एकदम उपयुक्त नहीं माना जा सकता। इन परिस्थितियों को देखते हुए गीति काव्य के मूल तत्वों, उसके उदय और विकास की अवस्थाओं का पूर्ण परीक्षण करना आवश्यक प्रतीत होता है। गीति काव्य क्या है? आरंभ में यह प्रश्न स्वाभाविक है, किंतु जिस प्रकार कविता को कोई सुनिश्चित और सर्वमान्य तथा पूर्ण परिभाषा उपस्थित कर सकना संभव नहीं है, उसी प्रकार गीति काव्य की भी कोई खास परिभाषा नहीं है। मुख्य लक्षणों के साधन के लिए हम दो पहलुओं से विचार कर सकते हैं। वास्तु की दृष्टि से गीति काव्य ज़्यादा आत्मपरक होता है, अर्थात उसमें मानवीय संवेदनात्मक तत्वों, इच्छा, संवेग, भावना आदि की प्रधानता होती है। ये लक्षण तो सामान्यतया साहित्य मात्र से कहे जा सकते हैं, क्योंकि साहित्य भी मूलतः भावनामूलक और संवेदनात्मक होता है, किंतु गीति काव्य में यह कुछ अधिक मात्रा में मिलता है। इसी विशेषता की ओर संकेत करते हुए डॉक्टर चार्ल्स मिल्स ने लिखा है कि वस्तुतः गीति काव्य को ही कविता कहा जा सकता है। किसी कृति विशेष में काव्यात्मकता जितनी अधिक होती है, वह उसी अग्निपात में गीति काव्य होती है। नाटक जितना ही काव्यात्मक होगा, वह उतना ही गीति तत्व से पूर्ण होगा। महाकाव्य जितना ही अधिक काव्यात्मक हो, उतना ही गीतात्मक होगा। स्पष्ट है कि गीति काव्य का एक अत्यंत आवश्यक धर्म उसका भाव प्रधान होना है। काव्य के इन प्रकारों में विवरण, वस्तुवर्णन और अन्य वैचारिक तत्व की प्रधानता हो सकती है, किंतु गीति काव्य में इसके लिए अधिक स्थान है। भावों की प्रधानता और कोमल अनुभूतियों को वस्तु में स्वीकार करने के कारण गीति काव्य स्वभावतः आत्मपरक हो जाता है। कवि अपने अनुभूति भावों को गीति में ढालता है। वस्तुगत विचारों से बचने के कारण उसकी कृति स्वभावतः ही वैयक्तिक और आत्मपरक होती है। दार्शनिक विचारकों ने गीति काव्य के आध्यात्मिक और वैयक्तिक स्वर को स्वीकार किया है। हीगेल ने गीति काव्य की जो परिभाषा दी है, वह इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हीगेल के इस मत में गीति काव्य का कवि जगत के सारे तत्वों को अपने में समाहित करता है, अपने वैयक्तिक भावों के प्रभाव से इसे पूर्णतः आत्मसात करता है और इस आत्मापरकता को प्रचित रखने वाले शैली में अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार गीति काव्य कविता के अन्य प्रकारों से अपनी आत्मपरकता, संवेग पूर्णता और कल्पनाशीलता के विशेषणों के कारण अलग प्रतीत होता है। वैयक्तिकता का गुण गीति काव्य को किसी एकांत विशेषता की ओर संकेत नहीं करता। जैसा कि ऊपर कहा गया है, आत्मिक अनुभूतियाँ अल्पाधिक रूप में अन्य रूपों में भी स्वीकार की जाती हैं। ऐसी अवस्था में यह कहना कि ये गीति काव्य की विशेषताएं हैं, बहुत उचित नहीं मालूम होता। फिर गीति काव्य के परिभाषा का दूसरा पहलू ढूंढना पड़ता है, वह है उसकी शैली। गीति काव्य की शैलीगत विशेषता है उसकी गीयता। गीति ग्रीक शब्द लिरिक का हिंदी रूपांतरण है, जिसका मूल अर्थ है वह गाना जो लायर बाजे के साथ गाया जा सके। कालांतर में इस रूढ़ार्थ में बहुत विकास हुआ। तीन प्रकार से गाए जाने के कारण इसके तीन भेद हुए। समूह गान, एक व्यक्ति द्वारा गाए जाने वाला, नृत्य के साथ गाया जाने वाला। ये भेद विकास की अवस्था तो बताते हैं, किंतु गीयता के गुण को किसी न किसी रूप में सभी स्वीकार करते हैं। श्री ई गोस इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के गीति काव्य शीर्षक परिच्छेद में लिखते हैं कि गीति काव्य सामान्य कविता के लिए प्रयुक्त परिभाषिक शब्द है, जो किसी गीति वाद्य के साथ गाई जाती हो या गाई जा सके। यहाँ आत्मपरक या वैयक्तिक अनुभूतियों का गुण बहुत बड़ा भेदक तत्व नहीं माना गया है। श्री गोस केवल गेयता को आवश्यक मानते हैं। गेय कविता को गीति काव्य तो स्वीकार किया जा सकता है, किंतु इस परिभाषा में अतिव्याप्ति दोष आ गया है। कोई भी कविता गाई जा सकती है, महाकाव्य तक गाए जा सकते हैं। अतः केवल गेयता को एकमात्र लक्षण स्वीकार करके गीति काव्य की परिभाषा नहीं बनाई जा सकती। यूरोप के प्राचीन साहित्य शास्त्रियों ने इस काव्य विधा के सैद्धांतिक मूल्यांकन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। ग्रीक विचारकों ने गीतियों को लक्षित किया था। उन्होंने मुख्यतः तीन विभेद भी स्वीकार किए थे जो ऊपर दिए गए हैं, किंतु इस विषय के अध्ययन और सैद्धांतिक सूक्ष्मताओं को व्यक्त करने का कोई प्रयास वहाँ नहीं दिखाई पड़ता। ग्रीस में विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले सामसवयिक गानों का श्रेणी विभाजन अवश्य किया गया, किंतु इसे काव्य के एक प्रकार के रूप में यहाँ भी बहुत महत्व नहीं दिया गया। यूरोपीय पुनर्जागरण काल तक गीति काव्य के विषय में कोई नियमबद्ध सिद्धांत निर्धारित नहीं हो सका। परवर्ती काल में कई विचारकों ने इस पर विचार किए, किंतु उपयुक्त दोनों लक्षणों पर ही विवाद पहुँच कर रह गया। श्री पाल ग्रेव, जिन्होंने गीति कविताओं का चयन और संपादन किया, गीति काव्य को थोड़े शब्दों को यूँ रखते हैं, यूनाइटेड कामा, गीति काव्य इकहरे विचार, अनुभूति या स्थिति का चित्रण है। इसमें संक्षिप्तता, मानवीय भावना का रंग और गति अवश्य होनी चाहिए, यूनाइटेड कामा। पाल ग्रेव की इस परिभाषा में दो और लक्षण दिखाई पड़ते हैं। पहला तो यह कि गीति काव्य में एक विचार या अनुभूति या स्थिति होनी चाहिए, उसमें उलझन या शाखा विस्तार अथवा भावों के संघर्ष की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस दृष्टि में पाल ग्रेव ने संक्षिप्तता को अनिवार्य गुण स्वीकार किया। यही विशेषता है जो गीति काव्य को एक और वर्णनात्मक बड़ी कविताओं से अलग करती है, दूसरी ओर उसमें प्रभान्वित को बढ़ाती है। एक भाव होने के कारण इस प्रकार की कविता सहज और सामान्य जन के लिए बुद्धिगम्य होती है। पाल ग्रेव ने जिस दूसरी विशेषता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है वह है गति की त्वरा। गीत काव्य में भाव श्रृंखला में परिवर्तन के लिए त्वरा आवश्यक है। सभी काव्य प्रभावित करते हैं। प्रेषणीयता में और रसोद्रेक उसका गुणधर्म होता है, किंतु उनमें प्रभाव उत्पादना की प्रक्रिया में क्रमिक विकास की स्थिति होती है। त्वरा या शीघ्रता बहुत जरूरी चीज नहीं होती, किंतु अत्यंत संक्षिप्त भावना की अभिव्यक्ति देने के कारण गीति काव्य में यह त्वरा अत्यंत आवश्यक है। हीगल भी इन दो विशेषताओं को स्वीकार करते हैं। उन्होंने गीति काव्य के लिए दो आवश्यक तत्व माने संबद्धता, पूरे छंद में भावानुकूलता और प्रभाव के समान स्थिति का अटूट निर्वाह होना चाहिए, अन्यथा प्रभाव में ह्रास की भावना बनी रहती है। दूसरा, कथन और घटना प्रवाह में शीघ्र परिवर्तन की स्थिति, नई बात न कहकर उसे पुनर्कथित हिस्से से जोड़कर माधुर्य और रसोद्रेक की सृष्टि करना है गीतिकार का कौशल है। इस गतिशीलता पर एक और दृष्टि से विचार किया जा सकता है। संगीत की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि वह हमारी सीमित भावना को समष्टिगत भाव चित्त के साथ जोड़ता है, इसलिए हम बिना किसी स्पष्ट अर्थ से रहित भावों को सुनते हुए किसी अज्ञात भावलोक में डूब जाते हैं। संगीत हमारे प्रज्ञा को एक क्षण के लिए सांसारिक यथार्थ के धरातल से उठाकर कल्पना के भावलोक में अग्रसर करता है। हम स्वरों के आरोह अवरोह की तथा उसके राग लहरों के स्पर्श को अनुभव करते हैं और बिना किसी संकेत या अर्थ के यह समझ लेते हैं कि अमुक राग शोक स्तुति का द्योतक है, मायूसी या निराशा का भाव व्यंजक है, अथवा उसमें उत्साह या आनंद सूचक भावों की प्रधानता है। इन्हीं अनुमेय भावों के अनुसार हम संगीत के लयबद्ध स्वरों से प्रभावित होते हैं। वंशी की करुण रागनी का कोई अर्थ नहीं, वह किसी प्रिया विश्लेष दुख से अभिभूत चित्त की करुणा को शब्दार्थ के माध्यम से व्यक्त नहीं करती। किंतु हर सहृदय व्यक्ति इस रागिणी से प्रभावित नहीं होता है। पुत्रोत्पत्ति के अवसर पर बजने वाली शहनाई और मृत्यु के अवसर पर कंपन भरी विलंबित स्वर लहरी की करुणा का अंतर कौन नहीं जान पाता। इस प्रकार संगीत सर्वाधिक अशरीरी कला है जो हमारे मन को सीधे स्पर्श करती है। गीत इसी संगीत का सहारा लेता है, वह एक कोमल स्वर लहरी की शब्द शक्ति को सहारा देकर धरती पर उतारता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म कोमल भावों को पदार्थ से संयुक्त करता है, अर्थहीन स्वरों में वैयक्तिक अनुभूति की सृष्टि करता है। वह एक वायु पदार्थ को धरती पर लाकर उसमें मानवीय सुख दुख की सर्व सामान्य अवस्थाओं से संयुक्त करता है। इसीलिए गीत का संगीत के इस उन्नयनशील भावोद्रेक शक्ति के साथ समन्वित होने के कारण भाव की अति तीव्र व्यंजना में सक्षम होता है। प्रोफेसर एस लॉज लिखते हैं कि गीत काव्य कल्पना की गति है जिसके द्वारा ससीम मानवात्मा असीम के साथ संबंध होने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार गीत काव्य में भावों की एक मेवता गेयता प्रभावान्विति और संबद्धता को विशेष लक्षण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। गीत काव्य की इन विशेषताओं को दृष्टि में रखते हुए हम सहज अनुमान कर सकते हैं कि इस काव्य विधा में साहित्य प्रणयन करने वाला कवि हृदय से कुछ भाविक और उपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील व्यक्ति होगा। यह अनुमान बहुत कुछ ठीक है, किंतु इसके आधार पर इस प्रकार के कवि को पलायनवादी या जागतिक संघर्षों से घबराने वाला समझना ठीक नहीं होगा। कवि के मन में गीत काव्यात्मक भाव की सृष्टि प्रायः शांत विक्षेप के कारण ही होती है। सर्वथा सहज ढंग से चलने वाले जीवन क्रम में भावना व्यतिक्रम के कारण जो अशांति उत्पन्न होती है वह एक शक्तिशाली भाव को जन्म देती है जो गीति का रूप ले सकता है। इसलिए मानसिक द्वंद की स्थिति कवि के मन में अवश्य ही रहती है। युग की समस्याएं संघर्षों की अवस्थाएं भी कवि के मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। इन वस्तुओं को वह जितनी ही एकाग्रता से सोचता है वह उसके हृदय में उतनी ही प्रबल भावना का रूप धारण करती है। उसके मन में क्षोभ आक्रोश या निराशा की प्रवृत्तियाँ इन्हीं का परिणाम होती हैं। गीति काव्य में इनकी भी अभिव्यक्ति होती है। वीरता पूर्वक गान और राष्ट्रीय संघर्षों से उत्पन्न गीत इसी के उदाहरण हैं। अपने सूक्ष्म भाव प्रमाणता और अभिव्यक्ति की बारीकी के कारण गीत कविता किसी भी भाव या वस्तु को स्वीकार कर उसे प्राणवान और जीवंत बना सकती है।